ओम शांति। ये तो सच है कि भगवान हम पर मेहरबान है या नहीं? बस हमें अपने पे मेहरबान होना है, ठीक है ना? आज की मुरली, रोज की मुरली ही सबसे अच्छी विधि होती है। रोज की मुरली से कुछ लेकर अभ्यास करना। और मैं सभी बहनों को एक चीज और कहूंगा, मुरली का रस बहुत बड़ा रस है, सुख है। जैसे ब्रह्मा भोजन देवताओं को प्राप्त नहीं है, वैसे ही मुरली का रस भी देवताओं को प्राप्त नहीं है। जो बहने मुरली सुनाती हैं, सभी सुनाती होंगी, वो मुरली में रस भरा करें। और सुनने वालों को भी चाहिए कि मुरली का समय पौना घंटा एक घंटा ऐसा हो जाए कि हम उस स्थान से एनर्जी लेकर उठें। रोज हमारे में कुछ भर जाए, सुख भरे, आनंद भरे, एनर्जी भरे, उसका बहुत फायदा होगा। मैं सुनाता रहा हूँ क्लास में, है तो मेरी ये पर्सनल बात, मुझे अपने जीवन में, पूरे जीवन में मुरली के समय में सबसे ज्यादा सुख मिला है। अभी भी हमारे यहाँ सुदेश दीदी पढ़ती रहती है, प्रभा दीदी पढ़ती है, बहुत रस हो जाता है। और रस तब आता है जो चीजें बाबा कह रहे हैं वो हम साथ साथ अभ्यास में लाएं। सबको सिखाना है, मैं इसलिए टीचर बहनों को कह रहा हूं, अगर बाबा ने मुरली शुरू की, आत्माभिमानी होकर बैठो तो सबको बैठा दें 10 सेकंड। बाबा ने शुरू की, तुम्हें अपार नशा होना चाहिए किसके सम्मुख बैठे हो, पूरी क्लास को इस नशे में ले चले, तो मुरली में रस भरेगा और सुनने वाले एनर्जेटिक होकर उठेंगे। मैं जो कुछ देख रहा हूं संसार के भविष्य को, लोग तो विनाश देख रहे हैं, मैं कुछ और देखता हूं जिससे आप भली भांति परिचित हैं, और वो है इस संसार में जय जयकार। आपको बाबा के दो महावाक्य सुना देता हूं, साकार मुरलियों से हैं वो, लेकिन सभी लोग उनको नोट नहीं कर पाते। बाबा ने कहा, बच्चे एक दिन आएगा इस संसार में स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन हो जाएगा, हिंदी रूहानी क्रांति हो जाएगी। क्रांति, क्रांति किसे कहते हैं? जैसे इलेक्शन में सब देखते हैं, वही चर्चा, वही चिंतन, वही टीवी पर सब कुछ, इसको कहते हैं क्रांति। ऐसा समय आएगा, बाबा, उसके बच्चे और उसका ज्ञान ही सब जगह चलेगा। सभी महसूस करेंगे इससे ही अंधकार मिट रहा है। सबको रियलाइज होगा जो युगों से गाते रहे, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, सबने सुना है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, सबको पता लग जाएगा ये हो रहा है। दूसरी सुंदर बात इसी में थी जो अति सुंदर है, अंत में एक बार घर जाने से पहले इस संसार में इस वसुंधरा पर प्योरिटी का रिवोल्यूशन हो जाएगा, हर धर्म की हर आत्मा पवित्र बनना चाहेगी क्योंकि घर जाना है। और ये दोनों काम बाबा हमारे द्वारा कराएगा। इसलिए मैं आप सभी को एक संकल्प देना चाहता हूं, टीचर बहने भी, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो भी, एक बात पे ध्यान दें कि आने वाले समय में मुझे क्या पाठ बजाना है। संसार में तो हाहाकार होगी, अभी भी हो रही, शुरू हो गया, होलसेल मौत हो रही है। एक दो दिन के बाद समाचार आ ही जाता है, 100 मर गए, 70 मर गए, 80 मर गए, 200 मर गए। ये शुरू है, ये विनाश के ही तो स्वरूप है। लेकिन मुझे सबको सकाश देकर क्या क्या करना है, अपना पार्ट खुद निश्चित करें सभी। और मैं एक चीज आप सभी को, विशेषकर बहनों को कहना चाहूंगा, जो आत्माएं योगी बन सकती हैं उन्हें बन जाना चाहिए। है तो सबके लिए, पर यह भी सत्य है कि सबसे योगी बना नहीं जाता, बहुत बड़ी एकाग्रता की इसमें जरूरत होती है, हर तरह के त्याग की आवश्यकता होती है, वो सबसे नहीं होता। बुद्धि बहुत बहुत डिवाइन होनी चाहिए योगी बनने के लिए, जिसमें कुछ भी गंदगी न भरी हो। जो बन सकते हैं उन्हें इस पर पूरा फोकस कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय योगियों का होगा। छोटी सी सोचने की बात है, सतयुग के अंत तक की जनसंख्या 2 करोड़, सब जानते हैं ना, और त्रेता के अंत तक की तो 33 करोड़। त्रेता के अंत में ये संसार, ये भारत बहुत दूर दूर तक फैल जाएगा। हमारे इतिहास में भी ये चर्चाएं हैं, उसमें नाम दिया गया है वृहत्तर भारत, विशाल भारत, जो इधर चीन के आगे रशिया तक पहुंच जाएगा, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा, ये सब आ जाएंगे, इधर मुस्लिम कंट्री, विशाल। तो 33 करोड़ लोग ज्यादा नहीं होंगे देवता, थोड़े थोड़े होंगे सब जगह। तो इतनी आत्माएं, कम से कम 10 करोड़, तो चलो 33 की बात आगे की छोड़ दो, कम से कम 10 करोड़, पहली 2 करोड़ सतयुग की और 10, इतनी आत्माएं तो ज्ञान आकर लेंगी ही। उसमें हमें मुख से 1-to-1 देना नहीं पड़ेगा, जैसे अब सोशल मीडिया के द्वारा बहुत कार्य हो रहा है, आगे कार्य होगा इससे भी विशाल, साक्षात्कार स्वरूप के द्वारा। इसलिए आज जो स्वमान की बात थी, उस पर सभी उन आत्माओं को बहुत ध्यान देना चाहिए जो इस अंतिम जीवन में, ध्यान से सुन लेंगे, जो इस अंतिम जीवन में, अंतिम समय में इस संसार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, चिंतन करेंगे। इस संसार से जाएंगे तो सभी, वो तो बाबा का प्लान है, लेकिन बाबा ने एक लाइन बोली है कभी, तुम तब तक घर नहीं जा सकोगे जब तक तुमने ब्राह्मण पन के कर्तव्य पूरे नहीं किए। सबके लिए बात नहीं है, चुनी हुई आत्माओं को कहा है भगवान ने, इसलिए ब्राह्मण पन के कर्तव्य आज के मूल्य में भी था। हे सुखदेव हमें सुख दो, भक्त पुकार रहे हैं, बहुत पुकार हो जाएगी। मैं कल कहीं गया था, मैं परसों, तो रास्ते में वो चला दी टेप, वो चलती है ना कारों में आजकल होती है, तो एक सीन आ रहा था बहुत अच्छा, मैं तो उसको समझ गया था, और तो समझ नहीं पाए कि अचानक श्री कृष्ण रात के 12 बजे जगे और रुक्मणी और सत्यभामा को कहा तैयार हो जाओ, बात भरने जाना है। कहाँ जाना है, कोई निमंत्रण तो आया नहीं। कहो नरसिंह मेहता की लड़की की शादी, सुना ना नरसिंह मेहता, गुजरात के जूनागढ़ के, जो सन्यासी बन गए थे, भक्त हुए बहुत ज्यादा, बहुत बड़े सेठ थे, सब कुछ छोड़ के चल दिए थे। याद आ गई तो छोटी सी कहानी सुना दूं। दोनों जा रहे थे रास्ते में, थोड़ी दूर पीछे उसकी पत्नी थी, आगे नरसी जी, सोना पड़ा मिल गया। नरसी मेहता सोने पर धूल डाल रहे थे, इतने में वो भी आ गई। कहा क्या कर रहे हो? ये सोना पड़ा था, धूल डाल रहा था, कहीं तुम इस पे मोहित न हो जाओ। उसने कहा तुम्हें तो ये सोना भी दिखता है, मेरे लिए तो ये मिट्टी है। वो उससे भी आगे थी। तो श्री कृष्ण की आंख खुली 12 बजे, भात भरने जाना है, मुझे बाबा की बातें याद आई कि भक्तों की पुकार ऐसे ही पहुंचेगी तुम पर, तुम इस देव देवियां हो, जो तुम्हारे भक्त हैं, जो वो तुम्हें पुकारेंगे ऐसे ही आवाज पहुंचेगी मन तक, और तुम सकास देकर उनकी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो बहुत बड़े बड़े कर्तव्य हमें करने हैं। सोच लो आने वाले समय में हम रोने वाले नहीं होंगे, रोते हुए के आंसू पहुंचने वाले। हम दुखी होने वालों में नहीं होंगे, हम दुखों से कराहती तड़पती आत्माओं के दुख हरने वाले होंगे। हम भय में जीने वाले नहीं होंगे, हमारे वाइब्रेशंस सबको निर्भय बनाएंगे, अपने को तैयार करेंगे। मैंने देखा कोरोना हुआ, बहुत बहनों ने टीवी देखना भी छोड़ दिया था। बात तो अच्छी थी पर क्यों छोड़ दिया था? देख देख के डर लगता है। और ये बात फेमस होती जाती थी कि कोरोना से कम लोग मर रहे हैं, डर से ज्यादा मर रहे हैं। तो हम अपने किसी इंपॉर्टेंट पार्ट को निश्चित करें, अगले 8-10 सालों में मुझे ये करना है। विनाश की बात छोड़ दें, विनाश तो प्रारंभ है। संसार में जिस गति से मानसिक रोग बढ़ रहे हैं और जिस गति से भटकती आत्माओं का प्रकोप दुनिया में बढ़ रहा है, वो विनाश का एक बहुत पावरफुल स्वरूप है, हल्का सलका नहीं। कोरोना के बाद ये सब बहुत हो गया है, हमें अपने को बहुत पावरफुल बनाना है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, अपने सेंटर को और जो गृहस्थ वाले बैठे हैं उन्हें अपने घरों के वाइब्रेशंस को सुंदर बनाना है। सभी बहनें ये अवश्य चाहती हैं उनकी क्लास हरी भरी हो, चाहते हैं या नहीं? ये नहीं मुरली में 5-7 लोग ही बैठे हों, हरी भरी हो, हॉल भरा हुआ हो, भंडारी भी भरी हो, रोज भर जाए, 15 दिन में नहीं रोज भर जाए। मैं आप सबको कहूंगा जो मैंने आपको याद दिलाया, 2 करोड़ और 10 करोड़, इस काम के लिए हमें 50-100 साल नहीं चाहिएंगे। ये काम जिस दिन साक्षात्कार का शुरू हो गया, एक एक दिन में 50-50 हजार ब्राह्मणों की संख्या बढ़ती दिखाई देगी। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। क्या? बाबा का दूसरा महावाक्य याद दिला देता हूं जो मुझे बहुत याद रहा है। अंत में सेवा उनके द्वारा ही होगी जिन्होंने अपने को सर्व खजानों से भरपूर कर लिया होगा। मैं आपको एक सुंदर गुह्य बात और कहना चाहता हूं। प्योरिटी पे मुड़ ली थी कल थी शायद, आपने नोट किया होगा बाबा का वो महावाक्य, पवित्रता तुम्हारे लिए उत्सव है, याद आ गया? दूसरी बात भी याद दिला दूं, ऐसी बातें अपने पास नोट रखनी है ताकि ये ज्ञान हमारे लिए बहुत बड़ा बल बन जाए। जो पास विद ऑनर होते हैं वे भी ज्ञान के सागर बन जाते हैं। कल की मुरली से था पास विद ऑनर माना अश्रतन। तो बहुत बड़ी स्थिति है, सेवाएं बहुत होंगी। मैं जो बात आपको कह रहा था, कई आप में से उस बात को ग्रहण करके ये महान कार्य करेंगे। मुझे पता है कईयों की प्योरिटी बहुत अच्छी होती है, पर प्योरिटी का बल जीवन में आ जाए उसके लिए आवश्यक है कि हम हर तरह के व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहें। भिन्न भिन्न तरह के व्यर्थ संकल्प हैं, इम्प्योरिटी के नहीं, केवल हजारों तरह के व्यर्थ संकल्प हैं, क्योंकि किसी की प्योरिटी बहुत सुंदर हो लेकिन व्यर्थ संकल्प चलते हो तो प्योरिटी का तेज उसका बल फीका रहता है। तो बाबा का महावाक्य सुन लें, जब से मैंने सुना तब से मुझे याद रहता है और ये मेरा लक्ष्य भी है, आप भी इसे लक्ष्य बना लें। बात सन 1975 की है। राखी के दिन बाबा को भोग लगाया। पहले ऐसे नहीं मनाई जाती थी जैसे अब है। 75 माना बाबा व्यक्त हुए थे 5-6 साल पहले, तो गुलजार दादी यहां थी, वो मैसेज लाई बाबा का पांडव भवन में। तो मैसेज था, 1 मिनट का मैसेज था, आगे चलकर तुम्हारे सामने बीमार लोगों की भीड़ आएगी, तुम उन्हें एक साफ दृष्टि दोगे और वो रोग मुक्त होकर घर वापस लौटेंगे, लेकिन ये काम उनके द्वारा होगा जो संपूर्ण निर्विकारी होंगे, क्योंकि मेडिकल साइंस तो हाथ ऊपर कर देगी, हम कुछ नहीं कर सकते। प्योर वाइब्रेशंस, प्योर एनर्जी लोगों के रोगों को ठीक करेगी। समय ऐसा आ रहा है, इसलिए अपने योग को 4 घंटे से ज्यादा करेंगे सभी, चाहे सेवाओं की सफलता के लिए, चाहे स्वयं की आत्मसंतुष्टि के लिए, चाहे अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, संगम का भविष्य सतयुग तो सुंदर हो ही जाएगा। 4 घंटे योग अभ्यास, उसमें 1 घंटा सवेरे 1 घंटा से हमको बैठकर हो जाए, 2 न हो 1.5 जरूर हो जाए, बाकी कर्म में, कर्म योग एक बहुत सुंदर स्थिति होती है। आज की जो स्वमान की बात थी और जो मैं आपको कहना चाहता हूं, सभी को अपने अपने सेंटर्स के, अपने अपने परिवारों के वाइब्रेशंस को बहुत अट्रैक्टिव बनाना है, आकर्षक, और हमारे स्वमान से वाइब्रेशंस फैलते हैं बहुत थोड़े में। अगर आपको अपने स्थान के वाइब्रेशंस को पवित्र बनाना है, बहुत पवित्र, इतना पवित्र जो भी वहां आए उसे सुख शांति का अनुभव होने लगे, तो इस स्वमान को सभी अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मेरे को तो बहुत अच्छा एक शब्द लगता है, बोला तो मैंने ही है पर बहुत बहनों ने इसको स्वीकार कर लिया है, मैं पवित्रता की देवी हूं। पसंद है? आप देवी बन जाएंगे, क्योंकि हमारे संकल्पों से स्वमान का यही लाभ है जीवन में। ये बात भी आप सीख लें और सिखाएं, क्योंकि आपके सामने सिखाने का फील्ड बहुत अच्छा होता है। अगर इस बात को आपके सेंटर में 50 भाई बहने भी सीख लेंगे तो बहुत बड़ा उपकार होगा। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, बहुत ध्यान दें इस बात पर। अच्छे संकल्पों से अच्छी एनर्जी, बुरे संकल्पों से बुरी एनर्जी, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, पावरफुल से पावरफुल, भय से कमजोर, और वो जाती है पहले ब्रेन में, फिर फैलती है पूरे शरीर में, फिर फैलती है बाहर। जिसकी जितनी पावर उतनी ही दूर तक ये एनर्जी वाइब्रेशंस फैलते हैं, जिसको इंग्लिश में ओरा कहते हैं, आभा मंडल, वो फैलता रहता है। अगर आपने दिन में 10-20 बार अभ्यास कर लिया, मैं सेंटर की इष्ट देवी हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, तो आपका पूरा सेंटर, आप 15 दिन करके देखें, सभी जो भी एक साथ रहते हैं 15 दिन में जो भी आएगा वो आपको बताएगा यहाँ आते ही क्या क्या मिलता है। तो सेवाओं की वृद्धि का आधार, आपने सुना है ये बाबा का महावाक्य, इसको पूरी तरह से अप्लाई करना है, जीवन में लागू करना है। सेवा की वृद्धि का आधार निमित्त आत्मा के वाइब्रेशंस और सेवा स्थान के वाइब्रेशंस हैं। मेरे पास माताएं आती रहती हैं, कहती हैं हमारी गीता पाठशालाओं की गीता पाठशाला की संख्या नहीं बढ़ती। मैं पूछता हूं योग कितना लगता है, सहज उत्तर दे देती है माता, भाई जी योग तो नहीं लगता। तो योग ही नहीं लगेगा तो संख्या कैसे बढ़ेगी। इसलिए मैंने आप सबको कहा, ये रिक्वेस्ट है, आने वाले समय में हम भी स्वयं को सेफ रख पाए, क्योंकि जो कुछ होगा वो साकार मूल्यों में आती रहती हैं, वो लाइनें मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, नहीं तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। आज आप सब सुनते सुनाते हैं मुरलियों से, मैं तो वो कहूंगा कि जो आदि में हुआ वही अंत में होगा, साक्षात्कार। बाबा अपने बच्चों को इतना बहलाएगा। एक बार तो बाबा ने ये भी कहा, पता ही नहीं चलने देगा कि कब विनाश हो गया, हो सकता है टीवी बंद करा दे। इसमें बाबा क्या कराएगा, पर सत्य तो यही है कि अगर एक एटम बम किसी ने छोड़ दिया और ऊपर के सैटेलाइट फेल हो गए तो सारा ही सिस्टम संसार का बिगड़ जाएगा। मेरी कई अच्छे वैज्ञानिकों से भी इस बारे में बात हुई कि अगर एटम बम छूट गया तो क्या सारे सैटेलाइट सुपर जो हैं आकाश में वो फेल हो सकते हैं। कहा ये तो बड़े देश युद्ध की तैयारी ही कर रहे हैं कि उस देश के सैटेलाइट सारे नष्ट कर दो, कंप्यूटर फेल, इलेक्ट्रॉनिक्स फेल, मोबाइल फेल, टीवी फेल, अब सोचो क्या बचेगा दुनिया में। गहरे डिप्रेशन में उतर जाएंगे लोग, बैंक में जो आपका खाता है पता नहीं चलेगा कितना है, सब आजकल मोबाइल पे है ना, ऑनलाइन। ये समस्या खड़ी हो सकती है। मैंने फिर उसे पूछा, फिर एटम बम आदि मिसाइल, क्योंकि वो भी तो कंप्यूटराइज है ना, वो कैसे चलेंगे। उसने दूसरी विधि बताई, वो मैं यहां नहीं बता सकता। तो एक ऐसे समय की ओर हम बढ़ रहे हैं जिसमें अनेक चुनौतियां हम सबके सामने होंगी, हमें सबको देना भी होगा और अपने को भी संभालना होगा। और बाबा का यही सिद्धांत सभी याद रखेंगे, जो अपने को संभालना सीख जाएंगे वही दूसरों को, बल्कि बाबा ने तो कहा सारी प्रकृति को और भविष्य में सारे संसार को संभाल पाएंगे। जो अपने को नहीं संभाल पाए यानी अपनी स्थिति को, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान का बल और योग का बल दोनों ही होने चाहिए। बहुत आत्माओं को ज्ञान के बल का बहुत कम पता है। ज्ञान बहुत बड़ी शक्ति है, लाइट भी है, रोशनी, सत्यता, और माइट भी है, ज्ञान में बहुत बड़ा बल भी है। मैं प्रैक्टिकल उदाहरण बता देता हूं। किसी माता के घर में कुछ खेल बिगड़ा, उसको बहुत चिंता होने लगी क्या होगा। अचानक उसके घर में लिखा रखा था, बच्चे तुम चिंता ना करो, मैं बैठा हूं, सब जगह लिखा है। उसको पता नहीं, एकदम जादू सा लगा कि बाबा कह रहा मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करते हो। सचमुच जैसे उसकी चिंताएं मिटी, वो सब बिगड़ा हुआ खेल ही ठीक हो गया। हमारी चिंताएं हमारे खेल को और बिगाड़ देती हैं। हमारी निश्चिंत स्थिति, बाबा पर समर्पण स्थिति हमारे सभी कार्यों को सफल करती हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत बहनों ने बड़े बड़े सेंटर बना दिए जिनके पास पैसा नहीं था। कुछ ऐसी विधि अपनाई कि 3 करोड़ का सेंटर बन गया। या तो सोच रही थी कहां से आएगा। बाबा को यूज करना है अपने जीवन में हर कार्यों के लिए। हम बाबा की शक्तियों को पहचाने, बाबा के हाथ में सब कुछ है। आपने मुरलियों से नोट किया हो, बाबा के ही शब्दों में, अगर बाबा चुटकी बजाकर ऑर्डर कर दे, प्रकृति अभी संहार प्रारंभ कर सकती है। वो शक्ति उसके पास भी है और वही शक्ति कुछ महान योगियों के पास भी आ जाती है। इसलिए अपने को बहुत योग युक्त करना है। योग में बहुत सुखद फीलिंग होती है 5 स्वरूपों के अभ्यास से। उसमें आत्मा का भी आ गया, भविष्य का नशा भी आ गया, देव स्वरूप पूज्य स्वरूप भी आ गया। उससे योग भी बहुत अच्छा लगता है। आप सभी करेंगे और कराएंगे, घरों की अनेक समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। योग फर्स्ट क्लास हो जाएगा, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। तो हम एक महान लक्ष्य की ओर चलें। अपना अपना लक्ष्य आप निर्धारित करें। यहाँ लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनने की बात नहीं, मुझे आने वाले 5, 7, 8, 10 साल में ये करना है। देखो मैं 2-4 उदाहरण दूं आपको। अनेक लोग रात को सो नहीं पाएंगे, ये समस्या बढ़ती जा रही है। हमें उन्हें वाइब्रेशंस देकर सुलाना होगा। दुखों के पहाड़ गिरेंगे, बाबा के शब्द हैं। लोग सेंटर में आएंगे, अभी भी हो रहा है बहुत जगह। बाबा के रूम में बैठे चित शांत हुआ। समस्याएं थी, ज्ञान भी नहीं है अभी, बाबा के रूम में बैठे समस्याओं का समाधान मिल गया। सेंटर को हाउस ऑफ एनर्जी बनाना है। समझते ना इंग्लिश का सब, हाउस एनर्जी का भंडार। देखो मैं बहुत तो कहा करता हूं, बहुत लोग कहते हैं बाबा तो आता नहीं, मधुवन में आके क्या करेंगे। आप में से कईयों ने भक्ति के कुछ स्थान देखे होंगे जहां बहुत जबरदस्त एनर्जी है। मैंने भी देखा, एक जगह अहमदाबाद के पास एक जगह एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। बहनों को भी निमंत्रण था, मैं भी चला गया। कहा ये जो स्थान है जहां ये मंदिर में मूर्तियों को रखा जाएगा, ये स्थान ऐसा है आसपास यहाँ कि यहाँ आते ही लोग निरोग हो जाते हैं। हम वहां सभी लोग 3 घंटे थे, मूर्ति आने में देर लग गई। 1 किलोमीटर से आ रही थी बाजे गाजे के साथ, धीरे धीरे ला रहे थे उनको रथों में। 3 घंटे हम वहां रहे, बैठने का कोई प्रबंध नहीं था वहां। अभी हम लोग थके नहीं, टांगे नहीं दुखी, एनर्जी। कई मंदिर कई गुरुद्वारे बहुत एनर्जेटिक हैं आज भारत में, तो क्या सोचो मैं क्या कह रहा हूं, क्या जिस मधुबन में भगवान आए हों एक दिन नहीं सालों साल, जहां स्वयं ब्रह्मा ने अखंड तपस्या की हो, ब्रह्मा के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया शास्त्रों में आदि योगी, जहां जगदम्बा सरस्वती ने गहन तपस्या की हो, जहां अनेक महान आत्माओं ने दादियों ने पवित्र आत्माओं ने तपस्या की हो, निवास किया हो, क्या वो स्थान एनर्जी से भरा हुआ नहीं होगा? होगा या नहीं? ऐसा समय आ रहा है जब इन तीनों स्थानों से लोग पानी भी भर भर ले जाएंगे। शुरू है ये काम, मधुबन से बहुत लोग पानी ले जाते हैं बोतलें भर भर, इसे पिएंगे बीमारी ठीक हो जाएगी, और भावना से उनकी ठीक हो रही है, क्योंकि सबसे पावरफुल एनर्जी वाला स्थान पांडव भवन संसार में, दूसरा ज्ञान सरोवर। यहाँ का तो हमें लोग बताते हैं, हम तो यहाँ रहते हैं तो हमें तो इतना पता नहीं चलता, पर बाहर के जो लोग आते हैं वो बताते हैं, यहाँ आते ही हमें क्या क्या हो गया, चित शांत, टेंशन में आए थे एक दो घंटे में सब समाप्त हो गया, मन हल्का हो गया। ऐसे ही वाइब्रेशंस आप सभी के सेंटर्स के भी होंगे, आपको करना है, होंगे। समय का बल होगा, बाबा भी ऊपर से बहुत कुछ करेगा, लेकिन हमें स्वयं भी बहुत कुछ करना होता है, इसलिए अपने जीवन को निर्विघ्न बनाना है। आपको याद हो बाबा ने कई बार चैलेंज किया था, कोई जोन निर्विघ्न बन के दिखाए, फिर कहा कोई सब जोन बन के दिखाए, फिर कहा कोई सेंटर बन के दिखाए। ऐसे नहीं सभी सेंटरों में विघ्न है, बहुत सेंटर हैं जहाँ कम से कम विघ्न होते हैं, विघ्न तो आते हैं, हम कलयुग के अंत में हैं, लेकिन हमारी स्थिति में विघ्न न पड़ जाए, हम बलपूर्वक साहसपूर्वक योग की शक्ति से विघ्नों को पार करते चलें, उसको निर्विघ्न कहा जाएगा। ये नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, विघ्न तो हैं ही, हम कलयुग के अंत में जी रहे हैं, शरीर की बीमारियों के विघ्न आ जाते हैं, संस्कारों के विघ्न आ जाते हैं, न जाने कौन आत्मा आपसे हिसाब लेने आ जाए पूर्व जन्मों का। आपका जीवन बहुत सुखी चल रहा है, कोई आए गड़बड़ हो गई, ऐसे नहीं होता, ये पूर्व जन्मों का कर्मों का खेल चल रहा है। इन सब को योग बल से ठीक कर लेना, पार कर लेना बहुत जरूरी है। याद हो आपको अव्यक्त मुरली में एक डेढ़ मास पहले ही शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा ने भी कहा था कि आप लोगों को तो चश्मा लग गया, टेक लगाकर बैठते हो, मैं भी बैठता हूं। ब्रह्मा बाबा कैसे बैठते थे, चश्मा भी नहीं था, और एक छोटी सी लाइन बोल दी, ये है सूक्ष्म शक्ति का प्रभाव। अगर हमारे पास योग की शक्तियां हैं तो हम इस शरीर के रोगों को भी सहज पार कर सकते हैं। आप अनुभव करके देखें, बहुत ज्यादा अगर शरीरीपन का अभ्यास किया जाए तो रोग में कभी भी पीड़ा नहीं होगी। यानी बहुत पीड़ित हो रहे हैं हम, ये योग की शक्ति पीड़ा का अनुभव होने ही नहीं देगी। तो अपनी स्थिति को भी निर्विघ्न रखना है, विचार करेंगे इस बात पर बहुत अच्छी तरह। बाबा का एक महावाक्य सुना देता हूं, ये वो महावाक्य है जो मुझे बहुत काम आए जीवन में। बाबा ने कहा, तुम तो विजय माला के ऐसे मणके हो, मुरली में कहा, तुम तो विजयमाला के ऐसे मन के हो जिन्हें स्मरण करने से भक्त भी विघ्नों से मुक्त हो रहे हैं। तो तुम्हारे पास विघ्न कहां से ठहरेंगे? तो अपनी शक्तिशाली स्थिति से, संकल्पों के बल से, अपने जीवन को, अपने सेवा केंद्र को, अपनी सेवाओं को निर्विघ्न बनाना है। हम अच्छी तरह जानते हैं, आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह, आने वालों में भी कोई ना कोई व्यक्ति विघ्न डालने लगता है सेवाओं में। बहुत प्यारा बनकर आता है, सहयोगी बनकर आता है, फिर विघ्नकारी बन जाता है। ऐसे में भी अपने को बहुत सावधान रखने की आवश्यकता होती है। अपने स्वमान को कभी डाउन नहीं करना है। मैं अपनी बहनों को सभी ये बात अवश्य कहूंगा, जरा खुले शब्दों में कहता हूं, जो बाबा कहते हैं, तुम्हारी आंख कहीं भी डूबनी नहीं चाहिए। कोई धनवान हो, कोई बड़े पद पोजीशन वाले हो, हम उनके इष्ट देव देवियां हैं। वो तो हमारे मंदिरों में जाके हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। हम किसी की और प्यासी नजरों से नहीं देख सकते, हम दाता हैं। ऐसा अपना स्वमान बढ़ाते चलें। तो कोई भी व्यक्ति आने वाला आप पर अधिकार जमाने लगे, ये किसी भी महान आत्मा को स्वीकार नहीं होना चाहिए। हमारा अपने पर अधिकार, हम स्वराज्य अधिकारी हैं, कोई हम पे अधिकार कर ही नहीं सकता। मैं इशारे में ये बात आपको कह दी, स्वमानधारी बनेंगे सभी। एक बात जो मैं बहुत समय से सिखाता आया हूं, क्योंकि मुझे उसके बाबा की मुरलियों से जो बातें मिली और उसके प्रयोग किए और कराए बहुत लोगों से, वो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। संसार का सारा मनोविज्ञान मिलकर भी वो चीजें नहीं बता सका जो बाबा ने अपने महावाक्यों में सुनाई हैं, और वो मन की शक्तियों के प्रयोग। तो मैं आप सभी को एक होमवर्क देना चाहता हूं, एक बाबा को यूज करेंगे जीवन में। बाबा को बुलाओ, आप कहीं भी कठिनाई हो रही बाबा को बुलाओ, उसे काम दे दो, ये काम आपको करना है। दूसरा, अपने मन की पावरफुल जो शक्ति है हमारी, संकल्प शक्ति, उसको यूज करना है। कैसे? बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बहुत अच्छा लंबा समय, ये अभ्यास करके संकल्प कर दो, ये कार्य ऐसे हो। आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई बीमार है, संकल्प कर दो जाते ही डॉक्टर मिले, संकल्प कर दो इसे जो ट्रीटमेंट मिले उसे तुरंत लाभ हो जाए, ये सुंदर संकल्प। मैं एक उदाहरण दिया, सेवा के मैदान में आप जा रहे हैं, आपने कहीं प्रदर्शनी लगाई है। कई बार हम सोचते रहते हैं कोई तो आएगा नहीं, नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं इष्ट देवी हूं, प्रदर्शनी लगाई है, देवकुल की 3000 आत्माएं आएंगी देखने आज, संकल्प करो, रिजल्ट देखना। कहीं पब्लिक प्रोग्राम हो रहा है, आप संकल्प कर रहे हैं पता नहीं लोग आएंगे या नहीं। मनुष्य की एक कॉमन कमजोरी है ये, मनुष्य सोचता है पता नहीं कोई आएगा या नहीं, ये सोचना राइट है या नहीं, बोलो? नहीं। आप संकल्प करो, मैं इस देवी शिव शक्ति मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, एक भी कुर्सी खाली नहीं रहेगी, सारी भर जाएंगी। परिणाम देखो, धीरे धीरे संकल्प शक्ति के प्रयोग करते चलो, परिणाम देखते चलो, अपने में विश्वास बढ़ता जाएगा। जरूरी यही है कि हमारी संकल्प शक्ति व्यर्थ संकल्पों में वेस्ट ना हो रही हो। थोड़े में सुना देता हूँ बाबा के महावाक्य, जिनके आधार पे हमने समाधान प्रोग्राम शुरू किया था वो सबके काम के हैं। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, कि कई बार की आई हुई बातें हमने उनको इकट्ठा किया, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं उनके सामने विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती। समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। मैं सारी इकट्ठे करके सुना रहा हूं। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं सफलता उनके चरण चूमती रहेगी। इसके प्रयोग हमने बहुत कराए, विद्यार्थियों से, एग्जाम देने वालों से, इंटरव्यू देने वालों से, नौकरी के लिए बहुत सफल हुए। और सबसे पावरफुल महावाक्य है, जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती है, नशा केवल याद नहीं, नशा, वे संकल्प शक्ति से ही सब कुछ कर सकते हैं। ये भगवान के महावाक्य हैं। इन सबको अनुभव में लाना है सबको, तो संकल्पों का प्रयोग करें आप और रिजल्ट देखते रहें। इसके लिए बाबा का महावाक्य था, जहां से हमने शुरू किया, मैंने पर्सनली शुरू किया था 35-40 साल पहले। फिर उसके बहुत सुंदर अनुभव हुए, सुन ले ध्यान से, और आप भी इसको प्रयोग करेंगे जीवन में। कोई भी बात सामने हो, परिस्थिति हो, समस्या हो, संकल्प करो उसका क्या इफेक्ट हुआ, उसको नोट करो, ऐसी रिसर्च करो तो तुम सर्च लाइट बन जाओगे। अव्यक्त महावाक्य था ये, मुझे बहुत भाया, क्योंकि केमिस्ट्री में ये सब रिसर्च बहुत होती है। कोई भी परिस्थिति आ गई, संकल्प करो, जो करना वो हमें पता होगा उस परिस्थिति में, उसका क्या इफेक्ट हुआ उसे रीड करो, नोट करो, ऐसी रिसर्च करो तो तुम सर्च लाइट बन जाओगे। तो हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, अपने जीवन को भी निर्विघ्न बनाएंगे, सेंटर को भी, और वाइब्रेशंस ऐसे क्रिएट करें सभी बहने भाई, आने वाले समय में अगर रोज आपके सेंटर में 1000 लोग आने लगे, आएंगे, तो वो तृप्त होकर जाएं। दृष्टि से ही तृप्ति देनी है। ऐसे वाइब्रेशंस होंगे तो फटाफट संख्या बढ़ेगी, देवकुल की सभी आत्माएं संतुष्ट होकर जाती रहेंगी। अब हम बस स्वमान के साथ समाप्त करेंगे। अपने कोई भी 12-15 स्वमान चुन लें आप सभी। बाबा ने कहा, सवेरे उठकर स्वमानों की माला सिमरण करो। यहां से शुरू कराएंगे अमृत वेला, सब आने वालों को भी सिखा दो, क्योंकि जब मनुष्य सवेरे उठता है उसका मन शांत होता है। कईयों का डल होता है ब्रेन, कईयों पे नींद का इफेक्ट होता है, उठते ही स्वमान याद कर लो, एक बार याद कर लो, दूसरी बार अच्छे नशे के साथ याद कर लो। और सहज तरीका है, 3 बातों के आधार पे सभी अपने अपने स्वमानों को बढ़ाएंगे। स्वमान को स्वीकार करना, मैं ये हूं भगवान ने कहा है, झूठ थोड़ा ही, मैं यही हूं, तो महान आत्माएं हो। वो दिन 4 शब्द बोले ना, हाईएस्ट, होलीएस्ट, लक्कीएस्ट, रिचेस्ट, 4 शब्द, ये हम हैं। तो अगर हमें ये नशा रहे, मैं रिचेस्ट हूं, बहुत धनवान हूं, तो धन आकर्षित होता रहेगा। यदि हमें ये नशा हो जाए, मैं बहुत लक्की हूं, भाग्यवान हो, भाग्य तेजी से जगता जाएगा। यदि हमें याद रहे मैं होलीएस्ट हूं, परम पवित्र, पवित्रता बढ़ती जाएगी। हाईएस्ट हूं, महानताएं आती जाएंगी। तो स्वमान को स्वीकार करना, फिर उसको स्मृति में रखना, फिर उसके नशे में रहना, तीन कदम चलेंगे, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। आप सबने सुना होगा, नहीं तो सुना देता हूं। बहुत लोग मानसिक रोग से ग्रसित आते हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, खुशी नहीं, ज्ञान योग का तो मतलब ही नहीं। हम उन्हें तैयार करते हैं कि बैठकर शांति से लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, पहले 21 बार लिखो, रोज 10-10 बढ़ाओ। लोगों के डिप्रेशन ठीक, भय समाप्त, एंजाइटी समाप्त, भिन्न भिन्न रोग हैं ये। तो हमारे स्वमानों में बहुत बड़ी शक्ति है। सभी स्वमानधारी बनेंगे, सारा संसार आपको सम्मान देने वाला है। लास्ट बात मास्टर ऑलमाइटी की मुझे भूल गई थी, जो मास्टर ऑलमाइटी के नशे में रहते हैं, एक दिन आएगा सारा संसार उन्हें सम्मान देने उनके पास आ जाएगा। तो स्वमान को बढ़ाएंगे, विघ्नों को भगाएंगे, इससे विघ्न भागेंगे। अभी हम मैं आपको बोलूंगा और सभी स्वमानधारी होकर ही यहां से उठेंगे, रेड लाइट। पहले सभी फील करें, बाप दादा का हाथ मेरे सिर पर आ गया, बिल्कुल स्पर्श महसूस करें बाबा के हाथ का, प्यार के सागर का हाथ सिर पर, जिसकी दुआओं में हम जीते हैं उसका हाथ सिर पर, जो हमारे भाग्य को चमकाने आया है उसका हाथ मेरे सिर पर, अब याद दिला रहे हैं। आवाज सुनेंगे बाबा की, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, इस संसार की महान आत्मा हो, मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर अपनी सारी शक्तियां तुम्हें दे दी हैं, तुम बहुत शक्तिशाली शिव की शक्ति हो, नक्षत्रों से भी अधिक बलवान हो, तुम्हारी जैसा भाग्यवान कोई नहीं, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, तुम वही हो दो युगों से जिनके मंदिरों में जाकर भक्त तृप्त होते आए हैं, तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न हो, तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम्हारी किरणों से इस जग का अंधकार दूर हो रहा है, तुम इस धरा की ब्यूटी हो जान के नूर हो। तुम यदि इस जहान में ना होते तो ये जान वीरान बन जाता। तुम्हारे कारण ही तुम पुण्य आत्माएं हो, तुम्हारे कारण ही संसार में मानवता जीवित है। तुम पवित्रता की देवी हो। तुम्हारा जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है। तुम सभी के मास्टर दुखहर्ता हो, दाता विधाता वरदाता हो। बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, ओम शांति।